परिशिष्ट चार, मांचू सुधार 1901 से 1905 ईस्वी, मांचू रिफॉर्म्स 1901 टू 1905। यह परिशिष्ट दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्राध्यापक संतोष कुमार राय एवं शालिनी जैन के द्वारा लिखा गया है। पृष्ठ संख्या 283। विधवा सम्राज्ञी तससी के लिए बॉक्सर विद्रोह की महाविपत्ति तथा विदेशियों के हाथों अपमान अत्यंत आघातपूर्ण अनुभव सिद्ध हुए। उनकी कुशाग्र बुद्धि और सहज विवेक ने उन्हें सजग किया कि यदि उन्होंने पश्चाताप का प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक सुधारों के प्रयास नहीं किए तो विदेशियों के समक्ष तथा आंतरिक रूप से राजवंश की स्थिति तथा स्वयं सामग्री के सम्मान को बनाए रखना कठिन होगा। 20 अगस्त 1900 ईस्वी को जबकि स्वयं तससी पेचिंग पर विदेशी सेनाओं के हमले के कारण पलायन की स्थिति में थी, उन्होंने अपने अहंकार को दबाते हुए एक राजाज्ञा जारी कर यह घोषणा की कि वह स्वयं चीन की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए उत्तरदायी है। सियान में शाही दरबार की पुनः स्थापना के बाद सम्राज्ञी तस्सी ने स्वयं सुधार करने की इच्छा व्यक्त की। वस्तुतः यह सरकार द्वारा स्वयं अपने लाभ हेतु आधुनिकीकरण की इच्छा का प्रदर्शन था। 29 जनवरी 1901 ईस्वी को विधवा सम्राज्ञी ने सुधारों की दृष्टि से अपने मंत्रियों, प्रांतीय अधिकारियों और विदेश स्थित राजदूतों से मंत्रणा आमंत्रित की। उन्हें 2 महीने के भीतर अपने सुझाव चीनी तथा पश्चिमी राजनीतिक प्रणालियों के आधार पर प्रस्तुत करने थे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वर्तमान शासकीय तंत्र, प्रशासनिक प्रक्रिया, जनसामान्य की प्रक्रिया, शिक्षा प्रणाली, सैन्य संगठन, वित्तीय व्यवस्था का पुनरुद्धार किस प्रकार संभव है। जहाँ सेजनों के अनुसार सुधारों का लक्ष्य केंद्रीयकरण, विशेषज्ञता तथा सूचना का विकास कर एक आधुनिक राज्य की स्थापना था। 21 अप्रैल 1901 ईस्वी को राजनीतिक मामलों का एक विभाग स्थापित किया गया ताकि एक वैध व औचित्यपूर्ण कार्यक्रम बनाया जा सके। यांगतज प्रांत के गवर्नर जनरल चांग चतुंग तथा लियो खुनपी ने शाही दरबार के आह्वान पर जुलाई 1901 ईस्वी में 3 स्मरण पत्र प्रस्तुत किए। इन स्मरण पत्रों में वर्तमान प्रणाली के प्रति निष्ठा प्रकट करते हुए उन्होंने मुख्यतया निम्न सुझाव दिए। सभी स्तरों पर शैक्षिक सुधार लागू करते हुए चीनी तथा पश्चिमी विषयों में सामंजस्य स्थापित किया जाए तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार लाए जाए। एक स्वस्थ व सक्षम सरकार के मूल तत्वों पर प्रकाश डालते हुए शक्ति व संपत्ति अर्जित करने के तरीकों की जांच आवश्यक समझी गई। साथ ही पदों की बिक्री के अंत असाधारण योग्यता को प्रोत्साहन तथा सरकारी अनियमितताओं के अंत पर जोर दिया गया। तीसरा, चीनी प्रणाली में सुधार कर पश्चिमी प्रणाली अपनाने के लक्ष्य से सैन्य, कृषि, खनन, वाणिज्य, उद्योग तथा तकनीक, मुद्रा तथा डाक सेवा में सुधार सुझाए गए। मुख्यतया इन्हीं सुझावों के आधार पर विधवा सम्राज्ञी ने संस्थागत सुधार प्रारंभ किए, जो कि 1898 ईस्वी के सुधारों की तुलना में अधिक लंबी अवधि 1901 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक चलते रहे। तस्सी ने स्वीकार किया कि चीन को सीमित तथा अनियमित सुधारों द्वारा नहीं बनाया जा सकता तथा संपूर्ण पुनर्गठन तथा आत्म सुदृढ़ीकरण ही भविष्य की एकमात्र आशा है। शैक्षिक सुधारों को प्राथमिकता देते हुए चांग चतुंग के विचारों को अपनाया गया। पुराने अष्टभुजी निबंध को समाप्त करते हुए चीन के इतिहास तथा विदेशी संबंधी जानकारी को नई परीक्षा प्रणाली का आधार बनाया गया। सरकार के प्रशासनिक पदानुक्रम के अनुसार जिलों में प्राथमिक स्कूल, मंडल स्तर पर माध्यमिक विद्यालय तथा प्रांतीय स्तर पर महाविद्यालय स्थापित किए गए। 1902 ईस्वी में पेचिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना था। सितंबर 1905 ईस्वी में परंपरागत परीक्षा प्रणाली के अंत तथा मई 1906 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना ने चीन में आधुनिक शिक्षा के आगमन की पुष्टि की। चीनी छात्रों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन दिए गए, परंतु केंद्रीय सरकार अकेले नई व्यवस्था को वित्तीय समर्थन देने में सक्षम नहीं थी तथा संपूर्ण कार्यक्रम प्रांतीय गवर्नरों तथा संभ्रांत वर्ग की उदारता पर निर्भर था। वस्तुतः कुलीन वर्ग के सूत्रपात उत्साह तथा वित्तीय समर्थन के स्तर के अनुसार ही विभिन्न प्रांतों में सुधारों की गति भी निर्धारित हुई। 1909 ईस्वी तक चीन में 1 लाख से अधिक आधुनिक स्कूल स्थापित किए जा चुके थे तथा शिक्षा हेतु विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में तो इतनी अधिक वृद्धि हुई कि 1907 ईस्वी में मात्र जापान में ही 15,000 चीनी छात्र थे। सैन्य क्षेत्र की दुर्बलताओं को पहचानते हुए इस क्षेत्र में भी सुधार लागू किए गए, जिनमें चिरली के गवर्नर जनरल के रूप में युवन सरखाए की निर्णायक भूमिका रही। 29 अगस्त 1901 ईस्वी को राजाज्ञा द्वारा परंपरागत सैनिक परीक्षाएं समाप्त कर दी गई। 1 सितंबर को प्रांतों में सैन्य प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के आदेश दिए गए तथा अगले एक वर्ष के अंदर हरा ध्वज सेना तथा पताका लश्कर में 20 से 30% कटौती का फैसला लिया गया। अब नई टुकड़ियों को सक्रिय तथा सुरक्षित सेना के पश्चिमी सिद्धांत के आधार पर पुनर्गठित किया गया। युवान सरखाए ने केंद्रीय समर्थन तथा आर्थिक सहायता के साथ उत्तरी सेना की स्थापना की। उत्तरी सेना को आधुनिक अस्त्र शस्त्र, जापानी प्रशिक्षक तथा विदेशों या नई अकादमियों में प्रशिक्षित योग्यता व कुशल अधिकारी उपलब्ध कराए गए, पर व्यक्तिगत वफादारी के आधार पर निर्मित उत्तरी सेना युवान सरखाए के प्रति ही समर्पित रही। यद्यपि 1906 ईस्वी में एक युद्ध मंत्रालय की स्थापना की गई जो अपने पूर्ववर्ती से अधिक सुनियोजित व पर वित्तीय शक्तियों के अभाव में वह सैन्य व्यवस्था में केंद्रीकरण नहीं ला सका। पृष्ठ संख्या 286। शाही दरबार ने महसूस किया कि मजबूत छत्रवादी शक्तियाँ, जिन्होंने शैक्षिक तथा सैन्य सुधारों की गति भी धीमी कर दी थी, उसकी नीतियों तथा सत्ता हेतु बाधा बनती जा रही थी। अतः पेचिंग सरकार ने केंद्रीय प्रशासन की शाखाओं के विकास तथा उनकी क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया। यह प्रक्रिया फरमानों के माध्यम से लागू की गई। विद्यमान प्रशासनिक ढांचों के तहत ही कमेटियां तथा विभाग बनाए गए, जिन्हें बाद में मंत्रालयों का स्तर प्रदान किया गया। विदेश मंत्रालय 1901 ईस्वी में, वाणिज्य मंत्रालय 1903 ईस्वी तथा पुलिस शिक्षा तथा युद्ध मंत्रालय 1906 ईस्वी में स्थापित किए गए। मांचुओं तथा चीनियों के बीच आधिकारिक पदों पर नियुक्ति हेतु संतुलन रखने के नियम को समाप्त कर दिया गया। एक ही व्यक्ति द्वारा कई पदों पर कार्य करने के नियम का भी अंत हो गया। प्रशासनिक सुधारों के कारण लगभग 1400 अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया। इससे पूर्व अगस्त 1901 ईस्वी में ही पदों की बिक्री की परंपरा रोकी जा चुकी थी। चीनी अधिकारियों हेतु कुछ पदों के अनिवार्य आरक्षण की प्रथा का अंत मांचुओं के पक्ष में सिद्ध हुआ। 1907 ईस्वी में जारी एक फरमान ने पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक, आर्थिक तथा कानूनी कर्तव्यों में विशिष्टता लाने का प्रयास किया, पर इस प्रशासनिक सुधार प्रक्रिया में राजस्व तथा वित्त का पुनर्गठन नहीं किया गया। प्रांतों में लागू कराधान अब भी स्थानीय आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते थे तथा स्रोतों का बहुत ही सीमित भाग केंद्रीय सरकार तक पहुंचता था। इस अव्यवस्थित ढांचे ने अंततः प्रशासनिक केंद्रीयकरण हेतु उठाए गए कदमों को कमजोर ही किया। जहाँ सेजनों मानते हैं कि प्रशासनिक सुधारों के समान संस्थाओं के सुधार का लक्ष्य भी राष्ट्र को केंद्रीय सत्ता के पीछे एकजुट खड़ा करना था। लाइक द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, द रिफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन एम्ड एट यूनाइटिंग द नेशन बिहाइंड द सेंट्रल पावर। 1905 ईस्वी से 1911 ईस्वी के बीच विकसित संस्थागत सुधारों ने चीनी राजनीतिक प्रणाली में संसदीय तत्वों को शामिल किया। 1 सितंबर 1906 ईस्वी के एक फरमान ने संवैधानिक सरकार के सिद्धांत के प्रति शाही सिंहासन की स्वीकृति प्रदान की तथा शासकों और शासितों के बीच निकटतम संबंधों की आवश्यकता पर बल दिया। संस्थागत सुधारों के पीछे प्रेरणा शक्ति जापानी संविधान था। राजकुमार चुन के नेतृत्व में गठित 12 सदस्यीय विद्वानों की समिति की सिफारिशों को स्वीकारते हुए अगस्त 1908 ईस्वी में संवैधानिक सिद्धांत प्रकाशित तथा सार्वजनिक किए गए। इसके तहत संसद को बिना किसी निर्णय के अधिकार के पूर्ण सलाहकारी भूमिका दी गई। संवैधानिक शासन के उद्घाटन के पूर्व हस्तांतरण की तैयारी हेतु 9 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई। प्रांतीय सलाहकारी सभाओं को 1909 ईस्वी तथा राष्ट्रीय परिषद को 1910 ईस्वी में स्थापित करने का प्रस्ताव था। कुछ दूरगामी प्रभाव वाले सामाजिक सुधार भी लागू हुए। मांचू तथा चीनियों के बीच अंतर विवाह पर रोक हटाई गई, अफीम के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया तथा स्त्रियों को पदबंधन परंपरा से मुक्ति दे दी गई। वस्तुतः मांचू सत्ता की व्यवहारिक स्थिति तथा इस स्थिति में भी विदेशी वस्तुओं के प्रति तस्सी की आंतरिक अरुचि के कारण सुधार कार्यक्रम सुधार के लक्ष्यों की प्राप्ति के स्थान पर बिना किसी ठोस आधार का थोथा प्रचार ही सिद्ध हुआ। चीनियों के विरुद्ध भेदभाव, छत्रवादी शक्तियां तथा अयोग्य मांचू नेतृत्व भी कार्यक्रम की विफलता में सहायक सिद्ध हुए, परंतु इन सुधारों ने कुछ भावी प्रवृत्तियों को निर्धारित किया। इसके लक्ष्य पुरातन पंथी थे, अतः यह प्रगतिवादी शक्तियों का समर्थन नहीं प्राप्त कर सका, जबकि इसके प्रभाव क्रांतिकारी थे। अतः इसने निहित स्वार्थों के आक्रोश को जगाया। सुधारों से आशावान व लाभ प्राप्त नए बुद्धिजीवी वर्ग ने केंद्रीय सत्ता की पुनर्स्थापना में योगदान देने के स्थान पर विपक्ष के हाथ मजबूत किए। विदेश भेजे गए विद्यार्थियों व सैनिकों ने महसूस किया कि मात्र एक पहिया बदलने से काम नहीं चलेगा, अपितु पूरा ढांचा ही बदलना पड़ेगा। सैन्य सुधारों में परिलक्षित क्षेत्रवाद तथा व्यक्ति आधारित वफादारी ने योद्धा सामंतवाद की पृष्ठभूमि तैयार की। वस्तुतः वह सुधार जिन्हें मांचू वंश ने मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाया था, उसके पतन में सहायक सिद्ध हुए। संक्षेप में, मांचू सुधार बॉक्सर आंदोलन में अपनी भूमिका से लज्जित था तथा उसके बाद की परिस्थितियां झेल रही विधवा सम्राज्ञी तस्सी की कूटनीति का अंग थे, ताकि अंतिम सांसें लेती मांचू सत्ता को कुछ समय और मिल सके। पर इतिहास की दिशा पूर्व निर्धारित थी तथा सुधार भी उसी धारा में बह गए। सितंबर 1908 ईस्वी में सम्राज्ञी तस्सी की मृत्यु ने सुधार कार्यक्रम का अंत कर दिया तथा 3 वर्ष बाद 1911 ईस्वी की क्रांति ने मांचू वंश का भाग्य तय कर दिया।